समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो, यूं चांद जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला अपना भारत।
ये वो शब्द हैं जो भारत के अतीत पर हमें गौरव करने का अवसर देते हैं, और जिस आवाज में ये शब्द आप सुन रहे थे उन्हें हम आज याद करेंगे, क्योंकि उनकी आज पुण्यतिथि है। और ये कार्यक्रम है न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे का, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड पर। एक नए दिन की नई और खूबसूरत सुहावनी सुबह में आप सभी का हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, और साथ हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। नमस्कार वैभव।
नमस्कार एंड हेलो देवेंद्र, एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल trivia related to this day, that is the 27th of September. So let us begin the show, but first the headlines.
जी, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में संशोधन करके न्यूनतम वेतन दर्ज में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। नई वेतन दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। न्यूनतम वेतन दर अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल स्तरों के आधार पर वर्गीकृत की गई हैं। इस वर्गीकरण में भौगोलिक क्षेत्रों ए, बी और सी का भी ध्यान रखा गया है। संशोधन के बाद ए श्रेणी के क्षेत्रों में निर्माण, सफाई, स्वच्छता और सामान लादने और उतारने से जुड़े अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन मजदूरी 783 रूपये प्रतिदिन होगी। अर्धकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी 868 रूपये होगी। कुशल लिपिक और निरस्त्र गार्ड के लिए न्यूनतम वेतन 954 रूपये प्रतिदिन होगा, जबकि अत्यधिक कुशल कामगारों और सशस्त्र गार्ड के लिए न्यूनतम वेतन 1035 रूपये प्रतिदिन तय किया गया है।
Government has blocked sites on the internet that are exposing the Aadhaar and PAN details of the citizens. Ministry of Electronics and Information Technology has identified some websites that were exposing sensitive personally identifiable information, including Aadhaar and PAN card details of the citizens. The Unique Identification Authority of India has lodged a complaint concerning for violation of the prohibition under Section 29, Subsection 4 of the Aadhaar Act 2016 on public display of Aadhaar information. Further, Indian Computer Emergency Response Team has shown some security flaws in the alleged websites. The concerned website owners have been guided on the actions to be taken at their end to make necessary changes and fix the sensitivities.
जी, और वैभव एक खबर है जो कि हमने शुरुआत में ही अपने अतीत के बारे में, अतीत के गौरव के बारे में बात की, और एक खबर ऐसी है जिसमें भारत के लगातार आगे बढ़ते रहने और प्रगति करते रहने की जो प्रेरणा है हमें मिलती है, और यह है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत के 39वें स्थान पर पहुंचने से जुड़ी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र की 10 अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है। श्री गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत मध्य और दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है, तथा WIPO विज्ञान और प्रौद्योगिकी SNT क्लस्टर रैंकिंग में 4th स्थान पर है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई को विश्व के शीर्ष 100 SNT क्लस्टर में सूचीबद्ध किया गया है। जीआईआई 2024 133 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और नवीनतम वैश्विक नवाचार रुझानों को ट्रैक करता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO जीआईआई 2024 के अनुसार चीन, तुर्की, भारत, वियतनाम और फिलीपींस पिछले दशक के सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों में शामिल हैं।
The Director General of Quality Assurance under the aegis of Department of Defense Production, Ministry of Defense, is celebrating the 68th DGQA Day today. The organization provides quality assurance cover for the entire range of arms, ammunitions, equipments, and stores supplied to the armed forces. Apart from quality assurance activities, the organization is responsible for import substitution and associates with Defense Research and Development Organization, DRDO, in the development projects. It also ensures documentation, codification and standardization action for minimizing the variety of components and equipment. On the occasion of the 68th DGQA Day, Director General N. Manoharan has extended greetings and best wishes to all officers, staff, retired personnel and families of Directorate General of Quality Assurance. In an exclusive conversation with Akashvani, the DG said, under the Make in India policy, several government schemes have been launched to streamline quality assurance procedures, reduce inspection time and grant greater autonomy to suppliers.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकीपॉक्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियां आयोजित करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने राज्यों से रणनीतिक निगरानी बनाए रखने का अनुरोध किया है। मंकीपॉक्स की जांच के लिए संचालित प्रयोगशालाओं की सूची भी जारी की गई है। मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों का आकलन करने का निर्देश दिया है, जिसकी समीक्षा राज्य और जिला दोनों स्तरों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी। मंत्रालय ने संदिग्ध और पुष्ट मामलों के लिए अस्पतालों में आइसोलेशन की सुविधा का भी प्रबंध करने का निर्देश दिया है।
A top Hezbollah commander, Mohammad Hussein Srour, was killed in an Israeli airstrike in Lebanese capital Beirut yesterday. The Israeli Defense Forces confirmed the death of Mohammad Hussein Srour, commander of Hezbollah's aerial forces, in an airstrike in Beirut. According to military sources, Srour was responsible for directing numerous aerial attacks on Israel, including those involving explosive-laden drones and cruise missiles. The IDF also alleged that Srour had been instrumental in establishing drone manufacturing sites in Lebanon, some of which were reportedly located beneath civilian buildings in Beirut. The strike was carried out amid rising tensions in the region, with war games simulating maneuvers in Lebanon being conducted by Israel.
और देश दुनिया की इन बड़ी खबरों के बाद बात करते हैं खेल से जुड़ी कुछ खबरों की। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम दो मैचों की श्रृंखला में क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश को चौथे दिन 280 रनों के बड़े अंतर से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली थी।
And some good news for the Indian shuttlers in the Macau Open Badminton. Kidambi Srikanth and the women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will lead the Indian challenge in the round of 8 today. In men's singles quarterfinals, 6th-seeded Kidambi Srikanth will clash against Hong Kong's Angus Eng Ka Long. The match will be played at 10:30 a.m. IST. Srikanth advanced to the last 8 rounds after defeating his compatriot Ayush Shetty 21-13, 21-18 in a pre-quarterfinal match yesterday. Moreover, in the women's doubles quarterfinal, the pair of Gayatri and Teresa will face Taiwan's duo of Hu Yin Hui and Wu Luo Yu. The match is scheduled to begin at 10:50 a.m. IST. Earlier, the Indian pair won against the Taiwanese duo of Lin Shi Chun and Teng Chun Hyun 22-20, 21-11 in the round of 16.
और प्रमुख खबरों के बाद अब हम चलते हैं महानगरों की तरफ, जानते हैं देश के प्रमुख महानगरों से क्या खबरें हैं। तो वैभव बताएं आप चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचार हमारे श्रोताओं को।
एब्सोल्युटली देवेंद्र, स्टार्टिंग द मेट्रो न्यूज सेक्शन, वी गो ओवर फर्स्ट टू चेन्नई, वेयर द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैज सीज्ड 112 केजीज ऑफ स्यूडो एफेड्रीन फ्रॉम एन एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट। Based on specific intelligence, DRI intercepted a container at Chennai port, which was destined to Australia. The container was declared to have 450 bags containing 50 kg quartz powder each. Examination of the individual bags was conducted and 37 packets containing around 3 kg pseudoephedrine each were found deeply concealed at the bottom of 37 quartz powder bags. Out of the total 450 bags, the individuals have been arrested. Searches were also conducted in two luxury cars used by the offenders and 3.9 lakh cash have also been seized. Further investigation is in progress. The Thambaram Corporation will renovate more than 30 parks with upgrades like new benches, walking paths, enhanced green cover, play equipment, drinking water and improved lighting. The corporation, which manages around 200 parks, is planning to construct 3 new ones. Despite these planned upgrades, many parks in the areas. The Education in Ireland, the national brand representing Ireland's top higher educational institutions, will conduct an education fair in Chennai on October the 5th. With 8,000 Indian students choosing Ireland as their study destination in 2023, this year's fair is expected to attract more interest in Irish institutions. This event will offer students and parents the opportunity to engage with representatives from 18 leading Irish institutions. Apart from Chennai, the fair will be held in Delhi, Pune, Mumbai and Bengaluru as well. Participants will gain comprehensive information on courses and post-study work opportunities. Additionally, there will also be a seminar conducted on the study visa application process presented by the Irish Visa Office in all 5 cities. And now moving over from Chennai, we go over to Bengaluru, Devendra, where the Union Minister of State for Railways, V. Somanna, reviewed the railway projects in Shivamoga district in Karnataka yesterday. He informed media persons that under the Amrit Bharat Station Modernization Scheme, 15 railway stations in the Mysore division will be upgraded at a total cost of 385 crore rupees. Shivamoga, Shikaripura, Rani Benur, New Railway Line, the coaching depot at Kotanganguru, the doubling of Birur to Shivamoga Town Railway Line and the development of world-class goods shed at Shivamoga were some of the projects taken up in the district. He said demand has been received by him to redevelop the Bhadravati Railway Station under the Amrit Bharat Station Scheme, upgrade Kumsi Railway Station, take up the Talaguppa Hunnavar new line, introduce a new Vande Bharat Express train between Shivamoga town and Bengaluru, and also increasing frequency and extension of various trains passing by Shivamoga. Now we go over to Hyderabad, where the Telangana state government will open a Pravasi Prajavani counter later today in Hyderabad to address the grievances of Gulf workers and NRIs. Transport Minister P. Prabhakar will formally open the counter. Pravasi Prajavani operates every Wednesday and Friday, providing a platform for expatriate workers and their families to seek assistance and solutions for their problems. Minister Prabhakar said the special counter will serve as a direct channel for the concerns of Gulf workers to be heard and addressed. Well, those were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What's going on in Delhi, Mumbai and Kolkata, Devendra?
Ji, Vibha. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के लिए आज मतदान होगा। डूसू के इस चुनाव के लिए कुल 21 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर 8, उपाध्यक्ष पद पर 5, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर 4-4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव के लिए मतदान 2 पालियों में होगा। पहली पारी में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली में शाम 3 बजे से 7:30 बजे तक छात्र वोट डाल सकेंगे। मतों की गिनती 28 सितंबर यानी कल होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर सत्यपाल सिंह ने प्रत्याशियों को अपनी अपनी प्रचार सामग्री को हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी उम्मीदवारों को लिंग दोह समिति की सिफारिशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। मुंबई का रुख करें तो मुंबई की मझगांव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को भाजपा नेता और पूर्व विधायक किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा सोमैया को बदनाम करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए उन्हें 15 दिन की हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने राउत को शिकायतकर्ता भाजपा नेता की पत्नी मेधा सोमैया को 25,000 रूपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। मेधा द्वारा 2022 में दर्ज की गई शिकायत के अनुसार राउत ने उनके पति पर मुंबई के पास मीरा भयंदर के अधिकार क्षेत्र में कुछ शौचालयों के निर्माण से संबंधित 100 करोड़ रूपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार की नीतियों में 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। राज्य ने 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत 47,500 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक अनुमान के अनुसार इससे 18,828 नौकरियों का सृजन होगा। मुंबई के सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में हरित ऊर्जा क्षेत्र में 4 कंपनियों के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और कोलकाता का रुख करते हैं, जहां भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना जताई गई है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। कूच बिहार में भारी से अतिभारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मालदा और उत्तर तथा दक्षिण दिनाजपुर जिलों में भी 27 सितंबर यानी आज के दिन भारी वर्षा होने की संभावना है। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी भी दी गई है। दूसरी ओर कोलकाता और दक्षिण बंगाल के अन्य जिलों में 26 सितंबर को मध्यम से भारी बारिश कुछ जगहों पर रिकॉर्ड की गई। और अब बाकी महानगरों के मौसम का हाल भी जान लेते हैं, साथ ही साथ कोलकाता के मौसम के हाल की भी बात करेंगे। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के भागों में भी आज बादल छाए रहने की संभावना है। हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना भी वैभव मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जताई गई है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। मुंबई की बात करें तो मुंबई और इसके सबर्बन एरियाज में पिछले दो दिनों में भीषण बारिश हुई है, जिससे काफी नुकसान की खबरें भी हैं और आज तेज बारिश में कमी आने की संभावना है। हालांकि मुंबई में घने बादल बने रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश भी जारी रह सकती है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा और अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। वैभव, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बादल रहेंगे और बारिश की संभावना यहां पर रहेगी
जी।
और कोलकाता में भी घने बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री को पार नहीं करेगा और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में कैसा मौसम रहेगा वैभव, आप बताएं।
Well, Devendra, Chennai is expected to have thunderstorms with rains. The minimum temperature was 27 degrees and the maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy skies with light rain. The minimum temperature was 21 degrees and the maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy skies with light rain. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
जी, और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। और उससे पहले हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, आज विश्व पर्यटन दिवस हम मना रहे हैं।
एब्सोल्युटली देवेंद्र, टूरिज्म ऑफन हाईलाइटेड फॉर इट्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन फॉस्टरिंग पीस On a global level, when nations are interconnected and interdependent, tourism, an industry made by people and for people, emerges as a compelling and dynamic force to defy stereotypes and challenge prejudices. One of the largest industries in the world is tourism, and it supports millions of jobs and makes a substantial GDP contribution to several nations. It has the capacity to promote global cooperation, accelerate economic progress, and protect cultural treasures. Since 1980, the United Nations World Tourism Organization has celebrated World Tourism Day as international observances on September 27th. This date was chosen as on that day in 1970, the statutes of the UNWTO were adopted. The adoption of these statutes is considered a milestone in global tourism. The purpose of this day is to raise awareness on the role of tourism within the international community and to demonstrate how it affects social, cultural, political and economic values worldwide. World Tourism Day's primary objective is to highlight the significance of tourism on a global scale. Apart from the economic impact that tourism brings to a country, it also plays a role in influencing the social, political and cultural environment of the countries. World Tourism Day 2024, under the theme Tourism and Peace, wants to highlight the vital role of this sector in fostering peace and understanding between nations and cultures and in supporting reconciliation processes. World Tourism Day 2024 will be hosted in Tbilisi, Georgia.
जी, और अगर हम बात करें दिल्ली में इस कार्यक्रम के आयोजन की, तो पर्यटन मंत्रालय की ओर से विश्व पर्यटन दिवस 2024 का आयोजन आज नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस अवसर पर विकास और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में पर्यटन की भूमिका पर बल दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इस अवसर पर मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की जाएगी। और अन्य ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो वर्ष 1066 में नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम ने अपनी सेना को इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी तट की ओर उस अभियान के लिए रवाना किया जिसे बाद में नॉर्मन फतह के तौर पर जाना जाता है।
इन द ईयर 1825 ऑन दिस डे दैट इज द 27th ऑफ सितंबर द फर्स्ट लोकोमोटिव टू हॉल अ पैसेंजर ट्रेन वाज ऑपरेटेड बाय जॉर्ज स्टीवनसन इन इंग्लैंड।
जी 1918 में ब्रिटिश सेना ने पहले विश्व युद्ध के दौरान वेस्टर्न फ्रंट पर अंतिम आक्रमण के तहत हिंडनबर्ग लाइन पर हमला किया था।
In 1940 the Tripartite Pact was signed. Tripartite Pact agreement was concluded by Germany, Italy and Japan on September the 27th, 1940, one year after the start of World War II. In 1958 Mihir Sen became the first Indian to cross the English Channel from Dover to Calais. In 1962 Yemen Arab Republic was established.
जी 1988 में फराटा धावक बेन जॉनसन को प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के कारण सोल ओलंपिक खेलों से निकाला गया। उनका 100 मीटर दौड़ में जीता गया स्वर्ण पदक भी वापस ले लिया गया। और वैभव हमें इसीलिए इतिहास पढ़ते हैं कि इतिहास में हुई गलतियों से भविष्य में अपने जो अपनी जो योजनाएं हैं अपने जो लक्ष्य हैं उनमें हम सुधार करते हैं।
एब्सोल्युटली देवेंद्र, आवर हिस्ट्री टीचेस अस अ लॉट टू लिव आवर लाइफ बेटर इन द प्रेजेंट डे एंड द फ्यूचर। इन 1989 द सेकंड टेस्ट लॉन्चिंग ऑफ इंडिया सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल पृथ्वी फ्रॉम द श्रीहरिकोटा स्टेशन वॉज सक्सेसफुली डन। In 1990, Kavita Garari sets record for 10-kilometer women in 48.10 at the Beijing Asian Games.
जी और कलकत्ता मेट्रो का टॉलीगंज और दमदम के बीच पूर्ण क्षमता से परिचालन शुरू हुआ था वर्ष 1995 में आज ही के दिन। और वर्ष 1998 में पीएचडी कर रहे दो छात्रों लैरी पेज और सर्जी बेन ने सर्च इंजन गूगल की स्थापना की थी आज ही के दिन। दुनिया का ये सबसे बड़ा इंटरनेट सर्च इंजन आज हर शंका का समाधान करता है। जी और आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं उन महान लोगों को जिनकी आज जयंती जन्मदिन या पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले याद कर रहे हैं हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक रहे मदनलाल मधु को जिनकी आज जयंती है। उन्होंने मॉस्को के प्रमुख प्रकाशन गृह प्रगति एवं रादुगा प्रकाशन में लगभग चार दशकों तक संपादक अनुवादक रहते हुए पुष्किन मायाकोस्की तोलस्तॉय गोर्की चेखव तुर्गनेव आदि कालजयी रचनाकारों की 100 से अधिक क्लासिक रूसी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद भारतीय पाठकों को सुलभ कराया। प्रोफेसर मधु मॉस्को रेडियो से भी जुड़े रहे। हिंदी और रूसी भाषाओं में इनके विशिष्ट रचनात्मक योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से उन्हें विभूषित किया गया।
Also today is the death anniversary of the man known as the father of Indian Renaissance, Ram Mohan Roy. He was an Indian reformer and writer who was one of the founders of the Brahmo Sabha in 1828, the precursor of the Brahmo Samaj, a social religious reform movement in the Indian subcontinent. His influence was apparent in the fields of politics, public administration, education and religion. He was known for his efforts to abolish the practices of sati and child marriage. Roy wrote the Gaudiya Vyakran, which was the first complete Bangla grammar book written. Ram Mohan Roy's impact on modern Indian history was his revival of the pure and ethical principles of the Vedant school of philosophy as found in the Upanishads. He preached the unity of God, made early translations of Vedic scriptures into English, co-founded the Calcutta Unitarian Society and founded the Brahmo Samaj.
जी और उन्होंने अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। धर्म और समाज सुधार उनका मुख्य लक्ष्य था जैसा वैभव ने बताया और अपने विचारों के प्रचार के लिए ही उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और अब याद करते हैं हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता यश चोपड़ा को जिनकी आज जयंती है। यश चोपड़ा दीवार, कभी कभी, डर, चांदनी, सिलसिला, दिल तो पागल है और वीर जारा जैसी अनेकों बेहतरीन और रोमांटिक फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया, निर्माण किया और पटकथा लेखन की भी भूमिका निभाई। बतौर निर्देशक यश चोपड़ा की पहली फिल्म थी धूल का फूल, वर्ष 1959 में आई थी। इसके बाद उन्होंने धर्मपुत्र का भी निर्देशन किया। दोनों फिल्में औसत रहीं लेकिन उनकी निर्देशन प्रतिभा को सबने अनुभव किया था। 1965 में आई फिल्म वक्त यश चोपड़ा की पहली हिट फिल्म थी। भारतीय सिनेमा के प्रमुख स्तंभों में से एक यश चोपड़ा ने 1980 के दशक में यशराज फिल्म्स की स्थापना की और बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म रही राजेश खन्ना अभिनीत सुपरहिट फिल्म दाग। 1975 में दीवार प्रदर्शित हुई जिसमें अभिनेता के रूप में अमिताभ बच्चन का सशक्त अभिनय रहा और इसने यश चोपड़ा को कामयाब निर्देशकों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के साथ सिलसिला और कभी कभी जैसी कई हिट फिल्मों को हम दर्शकों के लिए और सिने प्रेमियों के लिए
सिलसिले हुए दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए
He's considered among the best Hindi filmmakers, particularly known and admired for his romantic films with strong female leads, for his contributions to the films industry. The government of India honored him with the Dada Saheb Phalke Award in 2001 and the Padma Bhushan in 2005. It is the death anniversary of Kamini Roy, a Bengali poet, social worker and feminist in British India. She was the first woman honours graduate in British India. It is also the death anniversary of Sri Shobha Gurtu. She was an Indian singer in the light Hindustani classical style. Perfection, the Thumri style of singing, though she had equal command over pure classical styles, it was the light music that she received her fame, and in the time came founding, she won various laurels in India and abroad. Let us hear this Thumri rendition of the song Rang De Sari.
Rang Sari Gulabi Chunariya Re Rang Sari
संगीत और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णकाल के प्रमुख गायकों में एक महेंद्र कपूर को भी हम याद कर रहे हैं। उनके गाए देशभक्ति गीत आज भी भारत के राष्ट्रीय पर्वों का सिग्नेचर ट्यून है। अपने गीतों से कई पीढ़ियों को सम्मोहित करने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी महेंद्र कपूर ने बीते हुए लम्हों की कसक के साथ लिए आज के दिन 2008 में इस दुनिया को अलविदा कहा था। भजन हो, रोमांटिक नगमे हो या देशभक्ति गीत, संगीत के हर स्वरूप को उन्होंने अविस्मरणीय बनाया। उनके गाए देशभक्ति गाने लोगों को देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना से भर देते हैं।
मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती
मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती।
And it is a coincidence which connects two great personalities. It is the death anniversary of the great playback singer Mahendra Kapoorji, and it is the birth anniversary of the great Indian filmmaker Ravi Chopraji, who had directed the epic of Mahabharat, in which the title track was sung by Mahendra Kapoor. Ravi Chopra is also known for Mahabharata 1988-1990, the Mahabharata Katha, Ramayana 2001-2002, Vishnu Puran, Maa Shakti, and for directing hit films like The Burning Train, Baghban, and Babul, amongst others.
और इसके साथ ही अपने श्रोताओं से हम चाहेंगे कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की अनुमति, लेकिन आप लगातार सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड, जहां खबरों और गीतों का सिलसिला लगातार जारी है।
Stay tuned for coming up next, समाचार प्रभात, हिंदी न्यूज बुलेटिन, फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ लवली डे, नमस्कार।